अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में होएगा वो, तो थ्री प्रेडिक्शंस।
पोर्चुगल का क्या हुआ?
स्विट्जरलैंड ले गया।
नहीं, आपको पता है कि नॉर्मली आप और माजिद भाई प्रोग्राम किया करते हैं, तो मैंने कहा दरमियान में कि ना हो कि भाई लड़ाई हो जाए। हाँ। माजिद भाई जी शर्त हारे ने, उन्होंने पैसे तो देने नहीं है।
$10,000 हार चुके अभी तक मेरे से। मुझे दे देते तो मेरा पाकिस्तान का आने जाने का सारा खर्चा पूरा हो जाता। बट माजिद भाई ने, भाई सच अ मीनो, वो मुझे दे नहीं रहे मेरा हक, साडा हक इतने रख।
शर्त क्या है?
शर्तें यही है, अगर आप हारेंगे आप मुझे पैसे देंगे, मैं हारूंगी मैं आपको पैसे नहीं दूंगी।
देख ली। तो हेड भी मेरा, टेल भी मेरी।
चलिए जी, खबरों के लिए तैयार हैं। और साहब मुझे वैसे अफसोस हुआ मोरक्को के हारने का, मुझे अफसोस हुआ। जितनी सेलिब्रेशन वो लोग कर रहे थे,
सेलिब्रेशन थी और हमें भी बड़ी खुशी थी। लेकिन फ्रांस की टीम, मैंने पहले दिन माजिद भाई को कहा था, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग टीम।
फ्रांस को चाहिए था कि 5-6 गोलों से मारते।
ये वैसे आपकी कहावत है कि जीत एक रन से भी होती है। ये आपने क्रिकेट में कहा है कि जीत एक रन से भी होती है, जीत एक गोल से भी होती है।
इंतहाई पॉलिटिकल बयान है, जीत आपकी है। ये तो पॉलिटिकल बयान है कि भाई हार गए तो कोई जी बेईमानी हुई, बेईमानी हुई, बेईमानी हुई,
बेईमानी हुई है ना।
जीतना जीत जीत है साहब। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विलेज टेस्ट को जरूर ताबन दीजिएगा, इन बिजनेसेस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर हम कहीं गलत हैं तो आप मुझे कॉल करके ये जरूर कहें कि हम प्रोग्राम को आपकी तबीयत के मुताबिक कैसे कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।
आप गलत हैं।
कैसे?
बस गलत है, आपने कहा।
आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कहा ना, मुझे लॉजिक के साथ अगर आप कहें तो हम एंड लेट मी टेल यू, मुझे मैं फख्र करती हूँ अपने लिसनर्स पे। बाज़ औक़ात लोगों को अगर कह दो कि आप अपने लिस्टर जैसे हैं तो वो शायद अपने लिस्टर्स को बेवकूफ़ समझते हैं, तो वो लड़ पड़ते हैं इस बात के ऊपर। मैं तो कहती हूँ कि हम अपने आप को तब्दील ही आप लोगों की रविश के मुताबिक करना चाहते हैं।
भाई उन्होंने वास्ते तो गड़ा सी ना सड़ा का इथे रख, तुहाड़े वास्ते गड़ा आ देखे जरा किस में कितना
देखिए
जरा, लगा दे निकाले, क्योंकि आप घूम घूम के वही बातें, घूम घूम के वही बातें।
आवर की बजाय हम सुनाएंगे आपको गाना विलेज टेस्ट, को जरूर ताबुन दीजिएगा। विलेज टेस्ट आपका अपना जगह है, बल्कि मैं इकबाल मिलाड वाला साहब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वंडरफुल मैन इकबाल मिलाड वाला, मिडिल ईस्ट में भी आपने सीनियर पोजीशंस के ऊपर काम किया और उन्होंने भी जगह को देखा। और मेरी कोशिश होगी कि इकबाल मिलाड वाला के साथ आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम ज़रूर मैं शेयर करूँ। विलेज टेस्ट को पास आप जाइए, अपनी बच्चों को साथ लेके जाएं, बफे बहुत बड़ा है जिसमें कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, हर तरह की, इसके अलावा आप इनके मेन्यू की स्पेशलिटीज को, कढ़ाईस को, ब्रेकफास्ट को, बारबेक्यूज को, करीज को, रोल्स को, इन तमाम को एंजॉय कीजिएगा। आप अपने घर बैठ के भी ला सकते हैं, आप मंथली या वीकली डिशेज भी कर सकते हैं। तो कहाँ जाना होगा आपको? जाना होगा विलेज टेस्ट, 4141 डिक्स रोड, 9052323663। शाजिया ने गाना लगवाया, देखें जरा किस में कितना है दम। एक्चुअली कहते ना, कहनियाँ तीनू तो सुनानियाँ नो नू, ये गाना शाजिया ने लगाया है माजिद जमाल साहब के। कि फ्रांस जीत गया है, शाजिया की तीन प्रेडिक्शंस दुरुस्त हो गई हैं, तो ये गाना ये शाजिया वो हैं जो मेरे कंधे पर आके बंदूक चला रही हैं। एक्चुअली दिस सॉन्ग इज फॉर माजिद जमाल साहब।
गोली आएगी तो आई, तो आई नहीं तो नहीं, आप पीछे बैठी हैं
तो आप पे ये गोली चली है कि आपकी प्रेडिक्शंस गलत, हर प्रेडिक्शंस राइट। एंजॉय इट।
I'm Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दा दा भी चलाउने हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस ले क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोल दिया, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL because we care.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
Looking for a spiritual uplifting event to go this holiday? Join us at this year's Reviving the Islamic Spirit Convention to celebrate our 20th anniversary. After 2 years of virtual programming, we return with an in-person convention to showcase leadership from across the globe, from various backgrounds and schools of thought, to promote peace and tolerance at Toronto's Metro Toronto Convention Centre from December 23rd to 25th. Also enjoy nasheeds from Atif Aslam. For more info, visit RIC.
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਸੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆਈਟਮ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਔਰ ਕਾਲ 9058747171 905-875-7171। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ।
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेलीटाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666। ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس۔
السلام علیکم، میں شبہات علی فرام میگا منی ایکسچینج۔ ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 Cothra Road, Mississauga.
ہاں جی، ذرا ایک ویب سائٹ نوٹ کرو، afcgrocery.com۔ اے ہے جی ایشین فوڈ سینٹر دی برانڈ نیو ویب سائٹ، جتھوں تسی انڈو کینیڈین گروسری، مٹھائیاں، تازیاں سبزیاں، پھل فروٹ، انڈیا والے بھانڈے، سجاوٹ دا سامان، سارا کچھ جو سٹور تے جا کے دیکھنا۔ ہن ایشین فوڈ سینٹر دی اس ویب سائٹ تے دیکھو، $100 یا اس تو زیادہ دے آرڈر تے پاؤ فری ڈلیوری ان آل جی ٹی اے ایریاز، فری کرب سائڈ پک اپ اویلیبل ان آل لوکیشنز آن سیم ڈے۔ وزٹ afcgrocery.com۔
जी साबे ने नाज़रीन वेलकम बैक अगेन एंड 4:10:58 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और टाइम खतरनाक है तो कहती है ना खतरे में नाक है ओके टाइम का खतरे में नाक है और हम चलेंगे सीधा डायरेक्ट क्या होता है नॉट डायरेक्ट नो रॉन्ग यू आर रॉन्ग इंग्लिश सीखो शाजी जी से क्लासेस लो डायरेक्ट साइकिल पे बैठ के आना इधर और
टाइम सही देखना है
शाजी आप मलिक जी अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम जी बिल्कुल ठीक है टाइम नहीं है हमारे पास तो इसलिए हम भागेंगे आज घोड़े पे बैठ
भागेंगे मगर सारे अपने जितने टीवी पे हमें वॉच कर रहे हैं भाई आपसे इल्तिजा गुजारिश ये है कि आप सारे काले चश्मे पहन लें क्योंकि जो लाइटों में जो इनके जेवरात आपको चमकेंगे शायद आपकी आंखें खराब हो जाए जी
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इतने भी खतरे में नाक नहीं है हमारे जेवर
नहीं
नहीं नहीं अच्छा भाई भाई आप जो है ना मुझे जरा खरबे करने दें अभी वो स्पोर्ट्स पे मुझे आने दें जरा अच्छा आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें आप मुझे सपोर्ट पे आने दें इसलिए मुझे फटोफट ये करने
आज
दें
आप। अगर आप स्पोर्ट्स की खबरों का वेट कर रहे हैं तो आज स्पोर्ट्स की खबरें नहीं
अच्छा जी अच्छा जनाब आ रही है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं प्लीज उनके कन्वेंशन पे जरूर जाएं आपको हमने बताया कि दुनिया सारी से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आ रहे हैं ये जो इनका इवेंट है दिसंबर 22 से 25 पे हो रहा है 22 को जो है आतिफ असलम का नशीद का कॉन्सर्ट होएगा जिसमें कि वो हमद और नाद भी पढ़ेंगे उसके बाद 23 से 25 जो है ये इधर रहेगा कन्वेंशन इनका जिसमें कि बहुत पाकिस्तान के भी बहुत बड़े बड़े आलिम और दूसरे लोग आ रहे हैं जैसे कि अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं तो आपको जनाब नजर आएंगे जमील साहब जो हैं मौलाना जमील तो वो भी तो इस तरह के और दुनिया बाकी से और बहुत बड़े स्कॉलर्स आ रहे हैं तो आप ये इवेंट जरूर अटेंड करें अच्छा जी आज लेजर का एक पोल आया है और इस पोल के मुताबिक जो है कंजर्वेटिव पार्टी थोड़ी सी लिबरल पार्टी से आगे चल रही है इसमें 33% वोट्स जो है कंजर्वेटिव को मिलेंगे अगर आज इलेक्शन होता है 30% लिबरल्स को और ये जो है फोर्थ मंथ इन आर रनिंग है कि ये जब इन्होंने पोल किया है तो ये जब से पियर पेर पॉरेवर आए हैं इनके लीडर बन के उस वक्त से ये थोड़े आगे चल रहे हैं
एनडीपी ये भी बताना चाहिए कि प्लस थ्री और माइनस थ्री का इसमें होता है हमें
हाँ जी मार्जिन होता है हाँ जी प्लस माइनस एरर जो है उसका एनडीपी जो है जी उसने गेन किया है उसके 19% थे नवंबर में वो अब 21% पे खड़ी है पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा 4% है और ये ऑनलाइन इन्होंने किया था जो सर्वे किया था 1526 लोगों का 9 December to 11 ब्लॉक क्यूबेकवा जो है 7% पे है ग्रीन्स 4% पे है लेकिन अटलांटिक कैनेडा में लिबरल्स की जो है वो लीड है और इसके अलावा क्यूबेक जो है उसमें लोग ज्यादातर कहते हैं कि हम कंजर्वेटिव्स को वोट देंगे जो कि 36% पे है लिबरल्स 29 एनडीपी 26 कंजर्वेटिव्स इसी तरह मैनिटोबा और सस्कैचुअन में भी 47% पे है काफी आगे हैं और यहां पे जो है मेन पार्टी इनको देने के लिए बहुत बड़ा धक्का जो दे सकती है वो फिर से लिबरल होएगी और वो अच्छा इसमें जो 18 से 34 के करीब के जो वोटर्स हैं वो कहते हैं कि हम जो है ज्यादातर क्योंकि यंग ये बहुत लीडर हैं दोनों ही एक तो वैसे तो हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब भी यंग ही हैं लेकिन जगमीत सिंह और पेयर पॉरेवर जो हैं वो तो उनकी तरफ कुछ देखा जा रहा है कि झुकाव जो है वो अब ज्यादा जा रहा है 55 एंड ओल्डर जो हैं उन्होंने अपना मन जो है वो काफी हद तक बना लिया है वो कहते हैं जी 38% हम कंजर्वेटिव्स को देंगे 32% कहते हैं हम लिबरल्स को देंगे 15% जो है वो कहते हैं हम एनडीपी को देंगे रूरल एरियाज जो है उसमें 43% जो है वो कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी 26 लिबरल्स और जो अर्बन एरियाज हैं उसमें 34% लिबरल्स को 27% कंजर्वेटिव एंड 25% जो है वो एनडीपी को तो इस तरह से जो है ये मिक्स किस्म का बैग है जिसमें कि आप देख सकते हैं डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट पार्टीज की पकड़ है लेकिन ओवरऑल जो है कंजर्वेटिव थोड़ा आगे चल रहे हैं एक स्पीच की है जी इंग्लिश और फ्रेंच में पियर पॉलिवर ने अपने कॉकस के साथ और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी वो बात कर रहे थे लेकिन अपने कॉकस को उन्होंने कहा है जी कि अभी जो छुट्टियां क्रिसमस की आने वाली हैं कॉमन मैन जो है उसके साथ आप खड़े रहें उनके पास जाएं क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चली गई है लोग फूड बैंक्स में जा रहे हैं और छोटे बच्चे जो यानी कि जो यंगस्टर्स हैं जो अपनी एजुकेशन वगैरह लेके जो फिर कहते थे कि हम इंडिपेंडेंटली रहेंगे वो अब अपने पेरेंट्स के बेसमेंट्स में रह रहे हैं क्योंकि होम्स नहीं अब वो खरीद सकते हैं इसके अलावा उन्होंने बात की जी ड्रग ओवरडोज की भी जो प्रॉब्लम बहुत होगी और गन कंट्रोल लेजिस्लेशन जो कि बस चलता ही चला जा रहा है बिल C-21 उसके ऊपर और हेल्थ केयर सिस्टम पे वो कहते हैं मैं अपनी बेटी को भी जिसको कि माइग्रेन है उसको लेके जाता हूं हॉस्पिटल में तो मैं देखता हूं दूसरे बच्चों के साथ कई कई घंटे उसको वेट करना पड़ता है तो हमको एज अ जो ऑफिशियल ऑपोजिशन है ये जो होप्स लोग लेके आते हैं इस कंट्री में उनकी वो जो ड्रीम्स और होप्स हैं उनको हमको रिकिंडल करने की जरूरत है. तो अपने कॉकस को उन्होंने कहा जी लोगों के साथ टाइम गुजारें. मिनिस्टर मॉन्टी मैकनॉटन जो है लेबर मिनिस्टर जो ऑन्टेरियो के, वो कह रहे हैं जी यहां पे बहुत ज्यादा हाई ओपियोइड का क्राइसिस हो गया है. आज ये थे वी चीफ टैवरन इन टोरंटो में, तो वो कह रहे हैं कि जून 1st 2023 से हम तमाम जो हाई रिस्क बिजनेसेस हैं जहां पे के लोग ये इस तरह का यूज करते हैं उनको हम कह रहे हैं नेक्सोलोन किट्स आप रखें. ये नेक्सोलोन किट्स जो है ये एकदम से ब्रीदिंग रिस्टोर कर लेती हैं अगर किसी का ओवरडोज हो जाता है. वैसे ज्यादातर तो ये नाक से लिया जाता है लेकिन इसको इंजेक्ट भी किया जा सकता है. तो मॉन्टी मैकनॉटन साहब ने कहा ये हमको स्टेप्स इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि बेतहाशा जो है टॉक्सिक सप्लाई रिक्रिएशनल की स्ट्रीट ड्रग्स की बहुत ऑन्टेरियो के अंदर फैल गई है. एनवायरमेंट कैनेडा ने आज कहा है जी कि स्नो और बहुत ही स्ट्रांग विंड 70 किलोमीटर पर आवर की कल से देखी जाएंगी मुल्क में ज्यादातर हिस्सों में. टोरंटो, यॉर्क, डरहम, पील, हॉल्टन और सदर ऑन्टेरियो में 10 सेंटीमीटर स्नो का भी आने का है इंडिकेशन है फ्राइडे मॉर्निंग तक. उसके बाद जो है फिर फ्रेंडीज शुरू हो जाएंगी. तो वो कह रहे हैं एनवायरमेंट कनाडा वाले कि आपका जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रेवल है आप उसको कट करें. और जनाब अल जजीरा की आज बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव ये रिपोर्ट है जो इन्होंने, क्योंकि आज जो था फ्रांस और मोरक्को जो थे आमने सामने थे जिसमें के जो मोरक्को है वो हार चुका है, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फ्रांस जीत चुका है, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी जबरदस्त आज जो रिपोर्ट है वो की है. अच्छा आप वो कहते हैं जी कि ये दोनों आमने सामने आज हैं तो इसमें ये जो है मोरक्को जब जीता था पहले तो उसने बड़ा सेलिब्रेट किया था, तो ये कॉलोनी थी फ्रांस की. आज ये जो एक दूसरे के सामने हुए हैं और इनके रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा डिली डेली किस्म के रहे हैं. ये सेपरेटेड है बाय मेडिटेरेनियन सी. 780,000 मोरक्कन ओरिजिन के जो लोग हैं वो फ्रांस में रहते हैं. लेकिन जो मैक्रॉन साहब थी उनकी गवर्नमेंट ने सितंबर 2021 में अंडर फ्रांस जो इनका जो एक था वो इमिग्रेशन सिस्टम था उसके अंदर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और कहा था कि ये लोग जो मोरक्कन अल्जीरियंस हैं ये हमारे मुल्क में एंटर नहीं हो सकते, उसकी वजह से इनके ताल्लुकात काफी खराब हो जाते थे. इसके अलावा 1912 में थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो फ्रांस ने एक ट्रीटी ऑफ फेज मोरक्को के जो सुल्तान अब्दुल हाफिज थे उनके साथ की थी और उसकी वजह से इन्होंने फ्रांस को मोरक्को को फ्रांस का प्रोटेक्टोरेट बनाया था और उसके बाद फिर यहां पे कॉलोनी बनाई थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस जो है उसने 40,000 सोल्जर्स को कहा था कि भाई तुम मेरी मिलिट्री के लिए काम करो और जब आप हमारे लिए फाइट करेंगे और हम जीत जाएंगे तो हो सकता है हम आपको आजादी दे दें. लेकिन उसकी वजह से ये रिजेंटमेंट इस उस वक्त बढ़ गई जब उन्होंने उनको आजादी नहीं दी और ये चीजें और ज्यादा खराब हो गई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और उसमें लोगों का रिजेंटमेंट और बढ़ गया. 1944 में एक नई पार्टी बनी थी इस्तेलाफ पार्टी जिसने के कहा था कि हम मोरक्को के लिए जो है इंडिपेंडेंस लेकर आएंगे. 1942 में ये जो एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग थी ये हुई वहां पे कैसाब्लांका में जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती से और वायलेंटली रादर उसको जो है दे पुट इट डाउन और यहां पे इसको आउटलॉ कह दिया. जो मोरक्को कम्युनिस्ट और इस्तिकलाल जो पार्टीज थी उनको उनको कहा जी कि अब आप बिल्कुल अगर कोई उठा तो उसको जो है एलिमिनेट किया जाएगा और इनके जो सुल्तान थे मोहम्मद फाइव उसको एग्जाइल में भेज दिया मेडागास्कर में. ये चीजें ऐसे ही चलती रहीं और आते आते नवंबर 1955 में चीजें इतनी खराब हो गई कि फ्रांस को लगा कि उनको इनके सुल्तान को मोरक्को के सुल्तान को वापस बुलाना पड़ेगा. तो वो जैसे ही आए तो उन्होंने कहा जी हमें आजादी दो. तो फ्रांस ने मोरक्को को मार्च 1956 के अंदर जो है कहा कि हम अपना जो आप फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट थे इसको हम खत्म कर रहे हैं. 1973 में किंग हसन टू जो थे उन्होंने फिर बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई और उसके अंडर उन्होंने कहा कि 50% जो फॉरेन ओन्ड कंपनी है जिसको कि ज्यादातर फ्रांस ओन करता था उन्होंने कहा जी ये तमाम की तमाम कंपनियां आप ट्रांसफर कर दें मोरक्कंस को, वो इसके अंदर मेजर जो है स्टेक होल्डर्स होंगे. 1980s के अंदर जो इनके फिर रूलर्स आए मोरक्को के उन्होंने कहा जी फ्रांस के इतने वो खिलाफ थे कि उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होएगी और अब हमारी लैंग्वेज जो है अरबिक लैंग्वेज होएगी. फिर क्या हुआ उसके बाद, लेकिन 1980s में ये किया तो सही लेकिन चूंकि फ्रांस इनका मेन ट्रेडिंग पार्टनर था 30 इयर्स के बाद इनको फिर से वापस जो है मैथ्स खासतौर पर और साइंस और फिजिक्स जो है वो फ्रेंच में वापस लानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी इनके जो ट्रेड रिलेशंस और दूसरे रिलेशंस थे कोई इतने अच्छे नहीं हुए। रिलेशंस उस तरफ उस वक्त थोड़े से इम्प्रूव होने शुरू हुए जब 2007 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट सार्कोजी थे उन्होंने कहा जी कि हम आपका एक मॉडर्न रेलवे बनाते हैं और उसके 50% जो खर्चे हैं वो, बल्कि 51% खर्चे जो हैं वो फ्रांस उठाएगा, तो हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्रेंच एक अल बरोक कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिसको कि फ्रेंच कंपनी बनाएगी, हाई स्पीड रेल जो है वो करेंगे। अच्छा, इसमें वैसे तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं आज तक फ्रेंडलीज खेलते हैं, आपको पता ही है कि उसी वक्त 2007 में इन्होंने एक फ्रेंडली खेला था फ्रांस और मोरक्को ने, जो कि 2-2 से ड्रॉ हो गया था, लेकिन उसके बाद से 2014 से चीजें काफी खराब होना शुरू हो गई जब एक दफा फिर से फ्रांस ने, जो इनके एक इंटेलिजेंट के हेड ऑफ इंटेलिजेंस थे इनके अब्दुल लतीफ हमूची, उनके खिलाफ जो है उनको उनके ऊपर काफी सख्ती वख्ती की और उनको कहा जी कि तुम्हारे ऊपर टॉर्चर के एलिगेशंस हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के एलिगेशंस हैं, तो तुम्हारे खिलाफ जो है फ्रेंच गवर्नमेंट लेगी एक्शन लेगी, जिसकी वजह से मोरक्को और फ्रांस के ताल्लुकात फिर से खराब हुए। 2018 में किंग मोहम्मद सिक्स जो है उन्होंने फिर से मैक्रों जो है अभी के प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, उनके साथ मुलाकातें की और उसके अंदर इन दोनों ने कहा कि भाई हमको जो है अब प्लान जो है इकट्ठे आगे लेके चलना चाहिए। और मैक्रों साहब ने उस वक्त बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम मोरक्को का जो वेस्टर्न सहारा के ऊपर जो ऑटोनॉमी है उसको भी मानते हैं। मैक्रों साहब ने यह बयान उस वक्त दिया जब ट्रंप साहब ने भी ये कहा 2020 में कि ये जो एरिया है ये बिल्कुल मोरक्को के अंडर है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जाहिर है कि आपको पता ही है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आके उसको कहा कि खली वली हम नहीं मानते इस चीज को जो ट्रंप साहब ने किया, वो फिर से वापस आ गए हैं। अब जनाब जबकि फ्रांस ने और मैक्रों साहब ने 50% जो है वो कमी कर दी है वीजाज को मोरक्कन अल्जीरियंस और टूनिजियंस के लिए, तो हालात जाहिर है इन दोनों के मुल्कों में अब फिर से खराब है और आज तो ज्यादा ही खराब हो गए हैं माजिद भाई, है ना, क्योंकि मोरक्को को हरा दिया फ्रांस ने, मोरक्को को फ्रांस ने हरा दिया है, मोरक्को को फ्रांस ने हरा दिया है 2-0 से ठीक है जी,
शुड हैव बीन 7-0।
हां जी, बहरहाल जी हारना तो एक रन से भी होता है ना, बस हार है, एक गोल से भी हराते तो हार थी, दो से हराया उन्होंने। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि जनवरी नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी 2023 में मैक्रों साहब जो है वो अब मोरक्को का कर सकते हैं। तो आज आपके आपको इसलिए हिस्ट्री सुनाई है कि आप सेंटिमेंट समझ सकते होंगे दोनों तरफ के जो हैं प्लेयर्स उनके, हालांकि फ्रांस की जो जो टीम है फुटबॉल टीम उसमें भी ज्यादातर अल्जीरियंस मोरक्कंस और टूनिजियंस ही हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर प्रीडोमिनेंटली अ मुस्लिम टीम, फ्रांस की टीम जो है सॉकर की वो मुस्लिम है ज्यादा, तो कोई एक हद कोई उसमें तबरक के तौर पे क्रिश्चियन उन्होंने रखा हुआ है ठीक है जी। तो ये इनके बीच में जनाब हिस्ट्री थी और ये बड़ी राइवलरी जो है इनके बीच में चलती है। जी न्यूज टीवी की आज एक न्यूज है, जी न्यूज की तरफ से आज एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया है जो इनके इंडिया के एक्स आर्मी चीफ थे जनरल MM नरावन, उनका आज इंटरव्यू लिया गया है जिसमें कि वो एक पॉडकास्ट कर रहे थे सुमित प्रकाश से, तो उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर चाइना आगे 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 बढ़ता जा रहा है और वो हौले हौले बढ़े हैं चाइना वाले, वो इतनी तेजी से नहीं आए हैं तो इसीलिए वो दुनिया को भी इतने डेंजरस नहीं लग रहे थे, शायद हमने भी अंडर एस्टिमेट उनको किया, लेकिन आमने सामने जब भी हम आते हैं फिर हमारे बीच में क्लैशेज होते हैं, कभी क्लैशेज में कोई डेथ्स भी होती हैं कभी नहीं होती हैं, लेकिन इंडियन आर्मी जो है उसका असर्टिव रिस्पॉन्स होना बड़ा जरूरी है क्योंकि चाइना जो है अपने आप को बढ़ाता चला जा रहा है। इनसे क्वेश्चन किया उन्होंने सुमिता प्रकाश ने, उन्होंने कहा जी कि आप जो मे 2020 में गलवान के एरिया में जो ईस्टर्न लद्दाख है वहां पे जो क्लैशेज आए थे जिसमें के पता चला था कि 20 इंडियन सोल्जर्स जो उनकी डेथ हो गई है, तो आप उस वक्त जो थे आर्मी चीफ थे तो आपका फिर क्या उस पर रिस्पॉन्स था? वो कहते जी हम तो पेट्रोल कर रहे थे, इंडियन मिलिट्री जो है LAC के ऊपर अपनी तरफ पे वो तो नॉर्मल का पेट्रोल कर रही थी, इतने में चाइनीज जो है वो आमने सामने आने शुरू हो गए हमारे, जब आए तो हमको रिस्पांस देना ही था, जब हमने दिया तो हमें नहीं पता था कि वो हमारे ऊपर इस तरह अटैक करेंगे और हमारे बच्चों की जान जाएगी, तो वो कहते हैं जी कि ये उसकी वजह से जो था ये सारा कुछ हुआ था, लेकिन वो कहते हैं जी कि अब भी चाइना आगे आगे बढ़ रहा है, बल्कि जो एडवांस लाइन्स हैं उसके ऊपर चाइना ने दो पोस्ट बनाई हैं PP-15 के पास और उसमें जो है हमें खतरा है कि चाइना अब और अंदर आएगा। तो ये जो है आज उन्होंने बड़ा खतरे में नाक जो है वो इजहार किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है जी इंडिया के MS जयशंकर, मैंने आपको बताया ना उन्होंने एक लाइन रटी हुई है, उनको रटाई हुई है, पाकिस्तान टेररिस्ट है, ये हर जगह पे वो बोलते हैं जी, हर जगह जाके वो बोलते हैं। अच्छा आज इन्होंने सोचा कि मैं लाइन जो है ना जरा उसको थोड़ा सा छुपा के बात करूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी आज एस जयशंकर साहब जो कि प्रिजाइड कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, आपको पता ही है कि ये इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसके ऊपर प्रिजाइड उसका कर रहा था, वो जो सेशन है सेशन के ऊपर प्रिजाइड कर रहे थे ये, तो उसको हेड कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन को, तो उसके ऊपर प्रिजाइड करते हुए इन्होंने वो जो वहां पे डिबेट हो रही थी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टी लैटरलिज्म, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो मल्टी लैटरलिज्म के नाम पे कुछ प्लेटफॉर्म्स जो इंटरनेशनल यूज के हैं जहां पे कि हमको अच्छी बातें और रेलिवेंट इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए, डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने मतलब की बातें करते हैं, जिसकी की वजह से जो टेररिज्म के परपेट्रेटर्स होते हैं जैसे कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर वगैरह, उनको जो है फिर हम जो है हम और यानी कि हम यानी इंडिया और अमेरिका जो है रोक नहीं सकते हैं। जाहिर है कि इनका डायरेक्ट निशाना जो था वो चाइना के ऊपर था, क्योंकि चाइना जो है इनकी जब बिड आती है कि उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट कहा जाए या पाकिस्तान को कहा जाए तो वो रोक देते हैं। तो आज बड़े ही वेल्ड तरीके से इन्होंने नाम ना लेते हुए इन्होंने दोनों मुल्कों को रगड़ दिया, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी, है जी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर उनको हम चाहते हैं टेररिस्ट किया जाए, तो अब जाहिर है वो तो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो लेकिन कुछ लोग इसको रोक देते हैं, तो भाई कुछ लोग कौन रोकते हैं, चाइना रोकता है, तो अब मुल्क जो इस रीजन के अंदर बड़ा टेररिज्म फैल रहा है और जो है वो परपेट्रेटर्स जो है टेररिज्म के उनको जो है सजा देनी चाहिए, तो आज इन्होंने थोड़ी सी लाइन चेंज की, आज इन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हाँ 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 ऐसे ऐसे है, ठीक है जी, वरना इन्होंने एक वो लाइन रटी हुई है जयशंकर साहब ने, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है, वो उसी तरह शुरू करते हैं अपनी हर स्पीच। तो ऐसे है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है जी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज टेलीफोन के ऊपर बात की है बिल गेट्स के साथ, और बिल गेट्स के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क में पोलियो खत्म करें, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सिर्फ दो ही कंट्रीज रह गए हैं दुनिया में जहां पे पोलियो के अब केसेज हैं, वो कहते हैं जी हाँ उसके अंदर कुछ डिस्ट्रप्शन आई है क्योंकि ये जो अभी फ्लड्स आए थे उसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवस्टेट हुआ है, लेकिन हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिल गेट्स साहब ने बड़ी तारीफ की इनकी, उन्होंने कहा नहीं नहीं पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो पायन जड़े ने अमरीका रहने उन्होंने की पता कम हो भी रहे कि नहीं हो रहे हैं जी, तो बहरहाल जी वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं हिना रबानी खर, आज एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इस्लामाबाद के अंदर, और कल हमने आपको बताया था कि राणा सनाउल्ला साहब ने पूरी एक प्रेस रिलीज जारी भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए आज हिना रब्बानी खर साहबा ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है वाहिद दुनिया का कंट्री है जो टेररिज्म का नैरेटिव बयान करके उससे बेतहाशा फायदा उठा रहा है, रीजन के अंदर जो है बड़ा उसका इंडिया का प्रॉब्लमैटिक रोल है और उसको जो अपने टेररिस्ट ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए वो बड़ी हॉस्टिलिटी जो है पाकिस्तान के खिलाफ दिखाता है, और अभी आपको पता ही है कि पाकिस्तान में रॉ के बहुत सारे एजेंट्स जो है वो पकड़े गए हैं, तो ये अब अनडिनायबल और इनडिस्प्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास। हम हिंदुस्तान की तरह नहीं करते हैं कि जैसे कोई उधर कोई मक्खी भी मर जाए तो वो कह देते हैं जी पाकिस्तान ने की है, हम पूरी यानी ये नहीं उन्होंने कहा कुछ भी हो जाता है वहां पर तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया, हम ऐसे नहीं करते, हम पूरी जो है प्रोब बिठाते हैं, और ये जो हमने पूरी प्रोब बिठाई थी इतने महीने की उसके बाद हमने कहा है कि जी इंडिया जो है इसके अंदर शामिल था, इसीलिए आज उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और FATF को कहा है कि इंडिया को जो है टेररिस्ट वॉच लिस्ट के अंदर आप डालें और ये देखें कि ये क्योंकि हमारे पास सारी जो है पूरी एविडेंस है हमारे पास तो इनको अकाउंटेबल आप ठहराएं। वो कहते हैं जी फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद खान जो हैं उन्होंने भी डिप्लोमैट्स को इस्लामाबाद में बुलाया है, हिना रब्बानी कह रही थी, और वो उन्होंने कहा है उनको बताया है वो डोजियर पाकिस्तान की तरफ से दिखाया है जिसमें कि रॉ के एजेंट्स पकड़े गए हैं, और उनको बताया है कि हिंदुस्तान जो है कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं हिंदुस्तान को कहना चाहती हूं, हिना रब्बानी खर कहती हैं कि अगर आप हमसाए का घर जलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आग आपके घर तक ना पहुंचे, वो आग फिर आपके घर तक भी पहुंचेगी, तो आप ऐसा ना करें, ठीक है जी। अच्छा जनाब नैब जो है पाकिस्तान में उसने अब डिसाइड किया है कि वो जो कि हमारी हसीना है मरियम नवाज साहिबा PMLN की वाइस प्रेसिडेंट और उनके हस्बैंड जो हैं कैप्टन सफदर साहब, उनके बारे में अब मैं ऐसा नहीं कह सकती, बहरहाल उनके बारे में मरियम के बारे में कह सकती हूँ, हसीन खातून है, तो इनके बारे में उन्होंने नैब ने आज डिसाइड किया कि इनका जो एक्विटल है इसको अब चैलेंज नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेप्टेम्बर 29 में एक्जोनोरेट किया था مریم صاحبہ اور صفدر صاحب کو گرافٹ کیسز میں یہ جو ایون فیلڈ کا جو ریفرنس چل رہا تھا اس سلسلے میں جو کہ ان کو ہینڈ اوور کیا تھا نیب نے 2018 میں، لیکن نیب راولپنڈی نے ریسٹریننگ آرڈر ایشو کیے تھے اس کے خلاف اور انہوں نے کہا تھا آپ اس کو اور آگے لے کے نہیں جائیں گے، تو آج انہوں نے وہی کہا کہ ہم ایسے نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کے جو فاروق حبیب ہیں اس نے اس کا بہت برا منایا، انہوں نے کہا کہ ان کے اور گورنمنٹ کے بیچ میں این آر او ٹو جو ہے وہ بیہائنڈ دا سینز ہو گیا ہے. اس سے پہلے جو تھی ان کی جو سینٹنسز تھیں ہدیبہ پیپر ملز کیس میں بھی اس فیملی کی ختم کی گئی تھیں، اور اب یہ جو ہے اور اس میں نیب کو ان کیسز کو پروو کرنے کے لیے بلینز آف ڈالرز جو پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ وہ دیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے لگتا ہے کہ نیب جو ہے بالکل پی ڈی ایم کی کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اس کا ادارہ بن گئے ہیں. تو انہوں نے جو پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو کہا ہے کہ ساری کرپشن کا نوٹس لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں انہوں نے بھی آج کہا ہے جی کہ جو سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں فریال تارپور صاحبہ ان کو ہم ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے. فریال تارپور صاحبہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیڈرز ارسلان راج اور رابعہ اظہر نے ان کو کہا تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے انڈر آرٹیکل 62 آف کانسٹیٹیوشن، کیونکہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ بیان نہیں کیے تھے. ای سی پی نے آج کہا کہ نہیں، انہوں نے اپنے ایسٹ سارے شو کیے تھے اور اس کے لیے آپ کو کانکریٹ ایویڈنس لا کے دینی پڑے گی اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. جو ان کے خلاف فائل کی گئی تھی چارجز اس میں تھا کہ ان کی پراپرٹیز ہیں لڑکھانہ اور شاداک کورٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ فیک بینک اکاؤنٹس میں بلینز آف ڈالرز کے انہوں نے گھوٹالے کیے ہیں. تو آج کورٹ نے کہا کہ ای سی پی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ کیس ہم ختم کر رہے ہیں ان کے خلاف، ان کو نہیں ستانا آپ نے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اچھا جناب، پاکستان کی بھی بڑی ہسٹری ہے موراکو کے ساتھ، اور آپ کو بڑی سرپرائز آپ ہوئیں گے کہ پاکستان کے موراکو کے اوپر بڑے احسان ہیں. آج جب یہ جیتا ہے فرانس اور موراکو ہارا ہے تو اس کا افسوس پاکستان میں بھی بہت زیادہ فیل کیا گیا ہے، اور اس کی ایک ہسٹری ہے اور اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1952 میں موراکو جس وقت انڈر فرینچ رول تھا، تو یہاں پہ انہوں نے جو سلطان محمد فائیو جو تھے انہوں نے اپنے ایک انوائے احمد بیلافرج کو بھیجا تھا یونائیٹڈ نیشنز میں سپیچ کرنے کے لیے اس کی سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور کہا تھا کہ بھئی آپ جو ہمارے پہ ظلم کر رہے ہیں فرانس اس کے اوپر آپ بات کریں. تو ان کو منع کر دیا گیا تھا فرینچ گورنمنٹ نے، انہوں نے کہا کہ نہیں تم ہماری ایک کالونی ہو، تم انڈیپینڈنٹلی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں کیسے کر سکتے ہو. تو اس وقت پاکستان کے جو فارن منسٹر تھے سر ظفر اللہ خان صاحب، انہوں نے رات کا وقت تھا لیکن انہوں نے فوراً جو ہے اپنی امبیسی جو یو ایس کے اندر تھی وہ کھلوائی اور اس میں سے ایک پاسپورٹ بنا کے ان کو دیا بلفراج صاحب کو، اور ان کو کہا کہ تم یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ایز اے پاکستانی بات کرو گے اور موراکو کی بات کرو گے. تو اس وقت ان کو دیا گیا، اور وہاں پہ اس رات ان کو پاکستانی پاسپورٹ دے کے، اور وہ اس وقت بات کر چکے کریں جس کی وجہ سے ساری دنیا کی نگاہیں جو ہیں فرانس پہ آئیں، اور انہوں نے فرانس کو پریشرائز کیا کہ موراکو کو آپ آزادی دیں 1956 میں. تو آپ کو بڑی حیرت ہوئے گی یہ جان کے کہ موراکو کی جب انڈیپینڈنس ہوئی تو سلطان محمد فائیو جنہوں نے کہ اپوائنٹ کیا تھا بلفراج صاحب کو پرائم منسٹر، انہوں نے اپنے آفس کے اندر وہ پاکستانی پاسپورٹ جس کے اوپر بلفراج صاحب جا کے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بات کر سکے تھے اور پاکستان کا اور موراکو کا جو ہے کیس لڑ سکے تھے، اس کو فریم کر کے اپنے جو ہے آفس میں لٹکایا تھا. اور ہر وزٹر کو وہ بتاتے تھے کہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دس پاکستانی پاسپورٹ، کیونکہ اس نے ہمیں جو ہے وہ دیا تھا ایکسس دیا تھا کہ ہم یونائیٹڈ نیشنز میں اپنا کیس فائٹ کر سکتے. اور اس کے علاوہ بھی پاکستان جو ہے کوشچن کرتا رہا ہے ان کی جو سیلف ڈٹرمنیشن ان کو چاہیے موراکو کی یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے اندر، لیکن پاکستان شروع شروع میں تو فیل ہوا. اس کے بعد جو ہے 9th یو این جی اے کا جو ایجنڈا تھا اس میں افرو ایشین گروپس نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اس طرح سے جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ جو تھا وہ موراکو کو مل سکا پاکستان کی ایفرٹس کے بارے میں. تو جناب پاکستان کا بھی موراکو سے بڑا پیار ہے. نواز الدین صدیقی صاحب جو ہیں جی وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے ای ٹائمز کو، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ فلمیں ویسے فیل نہیں ہوتی ہیں، فلمیں اس لیے فیل ہوتی ہیں ہماری کہ ہمارے جو لیڈ ایکٹرز ہیں وہ 100-100 کروڑ روپیہ ایک ایک فلم میں کام کرنے کا لیتے ہیں، اور ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ فلم جو ہے چلے گی یا نہیں چلے گی. یہ ان کا کام نہیں ہوتا، ان کو اچھا کام کرنا چاہیے، فلم چلے گی یا نہیں چلے گی یہ ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ویسے تو آج تک کبھی پتا چلا نہیں ہے کہ بالی ووڈ کے بڑے اسٹارز क्या चार्ज करते हैं, लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं जो कि इतनी ऑथेंटिक भी नहीं मानी जा सकती, बहरहाल आई हैं कि जो बड़े स्टार्स हैं खासतौर पे जो तीन खान हैं 100 करोड़ रुपया पर फिल्म वो चार्ज करते हैं।
मगर फिल्म देखें चलती भी कितनी।
हाँ, लेकिन वो कहते हैं जी कि कभी कभी जब फिल्में फेल होती हैं तो वो फ्लॉप और फेल इसीलिए होती हैं कि ये लोग सारा पैसा खा जाते हैं और फिर फिल्म के बजट में कुछ रहता नहीं है तो और चीजों पे स्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये आज इन्होंने बड़ी बात की है। अच्छा जनाब, दो बहुत बड़े दिग्गज किस्म के जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, एक तो विवेक अग्निहोत्री जिनकी अभी फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, और एक जो है अनुराग कश्यप, उनके बीच में बड़ी लड़ाई झगड़ा जो है अब शुरू हो गया है। हुआ क्या है जी कि जो विवेक अग्निहोत्री हैं उन्होंने कहा जी कि एक किसी न्यूज़पेपर की जो गलत हेडलाइन थी उसको, जो कि उन्होंने गलत छापी थी उसको उन्होंने रीट्वीट किया और उसमें कहा, लिखा हुआ था कि कंतारा और पुष्पा जो हैं उन जैसी फिल्में इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। उसके ऊपर बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि मैं ये जो बॉलीवुड का माय लॉर्ड बना हुआ है मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। इसके ऊपर बहुत सारे जो इंटरनेट के यूजर्स थे उन्होंने विवेक अग्निहोत्री साहब को कहा कि सर ये गलत हेडलाइन छप गई थी, अनुराग कश्यप साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। अब इसके ऊपर अनुराग कश्यप भी अब भड़क गए हैं, उन्होंने कहा जी सर जिस तरह की आप फिल्में बनाते हैं ना ये कश्मीर फाइल्स टाइप की जिसमें कोई ना रिसर्च होती है ना कोई आपका बैकग्राउंड होता है ना आपकी टीम को कुछ पता है ना आपकी मीडिया हाउस को कुछ पता है तो आप बेपर की उड़ा देते हैं, उसी तरह आप जो मैं कहता हूं ना वो भी आप बेपर की उड़ा देते हैं बगैर अपनी रिसर्च किए हुए कि कौन क्या कह रहा है। तो कोई बात नहीं, नो वरीज, नेक्स्ट टाइम अपनी थोड़ी सीरियस रिसर्च करके मेरे खिलाफ बात करना। तो अब ये जो है ये जो है ये अब चीजें इनके बीच में भड़क गई हैं। अच्छा जरा पठान का गाना बेशरम रंग जिसकी हमने बात की थी आया था, वो बेशरम रंग जो है दिन ब दिन जो है लोगों के अंदर बेशर्मी बढ़ाता जा रहा है, इन अ सेंस के लोग बहुत उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि इंडिया की तो फिल्मों में अब आम लड़कियां जो है बिकनी पहन के आ जाती हैं, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत एतराज आ गया है। इसमें एतराज इसलिए आया कि मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्थम मिश्रा, उन्होंने कहा है कि ये फिल्म का गाना जो है इंतहाई डर्टी माइंडसेट से बनाया गया है, दीपिका का जो कॉस्ट्यूम है वो बेइंतहा ऑब्जेक्शनेबल है, और ये जो है दीपिका की तो मेंटालिटी आपको पता ही थी, ये टुकड़ा टुकड़ा जो गैंग थी उसको बड़ा हेड कर रही थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब राइड्स चल रहे थे, तो आपको पता ही है कि ये किस तरह की लड़की है। तो ये जो फिल्म के अंदर सैफ्रन और ग्रीन कलर्स यूज किए गए हैं, सॉन्ग में जो कलर्स यूज किए हैं, जो लिरिक्स लिखे हुए हैं, जो टाइटल है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, ये पीसफुल नहीं है, पठान है ना मूवी का नाम, तो वो कहते हैं कि ये टाइटल भी इतना पीसफुल नहीं है, और मैंने फिल्म के जो मेकर्स हैं उनको बताया कि इसको इंप्रूव करें, अगर इन्होंने चीजें इंप्रूव कर दी वेल एंड गुड, अदरवाइज ये फिल्म एटलीस्ट मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी।
वाओ,
ठीक है जी, हूं खुश हूं, आराम है।
दैट्स अ बिग थ्रेट।
हाँ जी बिग थ्रेट। और जनाब इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेट लेजेंड जो है कैप्टन एंड्रयू फ्लिंटॉफ, वो एक फिल्म करते हुए एक्सीडेंट में जो है काफी ज्यादा इंजर हो गए हैं। ये डंसफोर्ड एरोड्रोम के अंदर सरी ट्रैक के अंदर एक फिल्म कर रहे थे, इनका जो मोटर शो आता है टॉप गियर बीबीसी के ऊपर जो कि हमेशा ये बड़े शौक से करते हैं, उसके बीच में ये हो गए थे और जख्मी, और ये 2019 से इस शो को होस्ट कर रहे हैं, पहली बार ये जख्मी हुए हैं। तो उस वक्त तो इनको एड दी गई लेकिन फिर इनको जो है रश किया गया हॉस्पिटल में। आपको पता ही है कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 2010 में एट एज 32 कहा था कि मेरी जो नी इंजरी है वो काफी अब चलती जा रही है, तो उसके होते हुए इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी ऑल काइंड्स ऑफ क्रिकेट से, लेकिन ये अपना शो करते थे मोटर शो टॉप गियर, तो उसमें करते करते ये इनको चोट आई है, और लोगों ने आज जो है ट्विटर के ऊपर काफी पागल हुआ वतन के लिए, दुआएं कर रहे थे इनके लिए। बाबर आजम साहब जो है जी उनको पिशावर जलमी का अब जो है कैप्टन बनाया गया है, और जो पीएसएल 8 होने वाला है, इससे पहले वो कराची किंग्स के साथ थे जिनको कि उन्होंने छोड़ दिया, तो लास्ट मंथ जो है जलमी ने इनको प्लैटिनम कैटेगरी में लिया था। इसके अलावा जो हैदर अली और शोएब मलिक हैं वो भी कराची किंग्स में प्लैटिनम और डायमंड कैटेगरी के अंडर जो है मूव कर गए हैं। बाबर आजम जो है उन्होंने वो कराची किंग्स के लिए सिंस 2017 खेल रहे थे जब उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ी थी, और जो है पीएसएल के हाईएस्ट स्कोरर हैं, 2413 रन उन्होंने 68 मैचेस में बनाए हैं। लास्ट लेकिन सीजन में इनके साथ बड़ी बुरी हुई कि जो कराची किंग था वो ऐसी वाहिद टीम थी जो अपने 9 के 9 मैचेस जो थी वो लूज कर गई थी इन अ सिंगल सेशन, इन अ सिंगल एडिशन ऑफ अ गेम, तो उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया था। तो अब बाकी प्लेयर्स जो हैं उनके ड्राफ्ट जो हैं अब वो होंगे
हारो तो ऐसा
हाँ डिसम्बर
एक हारो एक जीतो, एक हारो एक जीतो, उसमें क्या मजा आएगा?
कटे कटे जीतो, कटे या हारो,
कटे हारो
या कटे जीतो, या कटे हमने सारे हारने, हमने एक भी नहीं जीता,
एक भी नहीं जीतना जी,
हाँ जाओ हमारी मर्जी। ठीक है जी। और जनाब कल जब अर्जेंटीना जीता तो आप सोचे सेलिब्रेशंस किधर हुई? अर्जेंटीना में हुई, जाहिर है ऑफ कोर्स अर्जेंटीना में। इसके अलावा और कहां सेलिब्रेशन?
शाजिया के ऑफिस में।
वो साड़ियां तो गल्ला ही और ने। हाँ जी हाँ जी हुई। लेकिन जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन देखी गई दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, एक्सक्यूज मी, लियारी में हुई जनाब, कराची के लियारी में। लियारी में, हाँ जी हाँ जी, यहां पे हुई। और ये बड़ा जो है सोशल मीडिया के ऊपर इसको बड़ा ही जो है वो स्वैग मिल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है लियारी तो वैसे मशहूर है गैंग वायलेंस के लिए और बड़े गरीब लोग बेचारे रहते हैं तो पॉवर्टी के लिए। लेकिन जब जो अर्जेंटीना जीता फाइनल में जाने के लिए, तो जो संडे को अब होएगा इनके और फ्रांस के बीच में, क्योंकि आज मोरक्को हारा है उसी से, तो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लियारी जो है बड़ा कराची वालों ने इसको सेलिब्रेट किया। वहां पे जब मीडिया वालों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि मेसी तो हमारा बड़ा ही फेवरेट स्टार है, और यहां पे तो वो कहने लगे, लोग कहने लगे कि यहां पे तो ईद के दिन भी लड़के शलवार कमीज नहीं पहनते, यहां पे अर्जेंटीना की टी शर्ट्स पहनते हैं ईद के दिन भी, उनको इतना प्यार है। उन्होंने कहा अच्छा दूसरे नंबर पे तुम्हें किससे प्यार है? उन्होंने कहा जी दूसरे नंबर पे हमें जो ब्राजील का नेमर है उसको हम बड़ा प्यार करते हैं। तो जाहिर है कि जिस वक्त हमारा अर्जेंटीना जीता तो हमने नाचा गाया डांस किया फायरवर्क्स किए, हम बड़े खुश हैं। और अगर आप, वो कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि अगर आप इस वक्त लियारी के एरिया में जाएं तो उनकी जो दीवारें हैं उन पे बड़े बड़े जो है म्यूरल्स बने हुए हैं इनके, अर्जेंटीनियन जो प्लेयर्स हैं उनके। तो जनाब ये लियारी में बड़ा जो है वो, वैसे एक मीम भी आई थी इसके ऊपर कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मिल रहे हैं फीफा के प्रेसिडेंट से और कह रहे हैं हम लियारी में फुटबॉल डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि इतने फैंस है लियारी में फुटबॉल के,
यहाँ पर बड़ी फुटबॉल, आप देख लीजिए कि लियारी में बड़ी फुटबॉल खेली जाती है,
खेली जाती है। वो कहते हैं हम तो ईद पे भी नहीं पहनते शलवार कमीज, हम तो अर्जेंटीना की टी शर्ट पहनते हैं।
लियारी में तो बड़ी फुटबॉल खेली जाती है, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स,
वेरी गुड प्लेयर्स, बट वही है ना हम डेवलप नहीं करते ना, हम डेवलप नहीं चीज को करते, वो टैलेंट है इतना जबरदस्त,
मगर ये कह देते हैं दे आर वेरी गुड प्लेयर्स एंड दे आर अमेजिंग।
तो अब फाइनल जो है अर्जेंटीना और फ्रांस खेलेगा,
फ्रांस के प्रेसिडेंट भी वहां पर
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल,
वो भी आज बड़े खुश थे, वो देखे सामने बहुत खुश नजर आ
रहे हैं, बिल्कुल
हमारा जो टीवी देख रहे हैं हमारा बहुत खुश नजर आ रहा है,
बड़े खुश हैं वो। तो वो वही कह रहे थे लोग, एक और मीम थी तो कि इनको कैसा लग रहा है कि इनकी एक पुरानी कॉलोनी जो इनके साथ खेल रही थी।
हम और बात नहीं करेंगे स्पोर्ट्स पे,
मोरक्को आज हार गया फ्रांस से 2-0।
स्पोर्ट्स पे और बात नहीं करेंगे, बाकी की बातें
फाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में होगा।
बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात, उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच,
थैंक यू भाई, आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो।
मांगता हूँ इलाही में। سب پہ کرم ایک سا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی تجھ سے دعا مانگتا ہوں
یہ نفرت کی آگ نہ گلشن جلا دے جو اس آگ کو میرے مولا بجھا دے میں ایسے کرم ہوا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا
صدا ان پہ سایہ تیرا مانگتا ہوں الہی
पानी हूँ जा मैं बका मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ
करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
Thank you. तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा, एक मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझ पे नजर हो साहिबा।
कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं।